بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. گفتگو ہماری کلام جدید میں ہے اور ہم فصل ہفتم میں پہنچے ہیں جس کا عنوان زبان دینی ہے. یہ فصل انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اگر یہ بحث حل ہو جائے بہت سی مشکلات کے جو اس وقت ظاہراً نظر آتی ہیں وہ تقریباً حل ہوتی نظر آتی ہیں اگر یہ بحث حل ہو جائے. چاہے ہم مشکل رکھتے ہوں یا دوسرے ہم سے مشکل رکھتے ہوں, وہ چاہے وہ غربی ہوں جو اسلام کے اندر نہیں موجود, مسلم نہیں ہیں, یا خود مسلمانوں کے درمیان, یا حتیٰ خود ایک مذہب کے درمیان جو اختلافات موجود ہیں, اس کی مین وجہ بعض اوقات یہی بنتی ہے کہ زبان دینی کا مبنی خوب روشن نہیں ہوتا. اس کتاب کے اندر بھی ساری بحثوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا, کیونکہ عرض کیا تھا کہ یہ کتاب پہلی کتاب کلام جدید کی شمار ہوتی ہے, لہذا اس لیول تک جو ذہنیت ہے طلاب کی مطالب کو تحمل کرنے کی, ان مطالب کو ذکر کیا ہے. والدہ آپ دوستان سے گزارش یہی ہے, میں باقی اپنے دوستان کو بھی بہت زیادہ تاکید کرتا ہوں جب بھی بحث ہوتی ہے, کہ یہ وہ بحث ہے کہ انسان اگر اس کے اندر سالوں لگائے تحقیق کے اندر تو اس نے ضرر نہیں کیا. انتہائی مہم بحث ہے. قرآن کی تفسیر, روایات کا فہم اور اس قسم کی باقی دین کے اندر جو ظاہری مشکلات نظر آتی ہیں یا دوسرے مشکلات پیدا کرتے ہیں, ان کا جواب تقریباً اسی مبنے کے اندر موجود ہے. زبان دینی سے کیا مراد ہے؟ مثلاً یہاں پہ چند سوال کی صورت میں مطرح کرتے ہیں کہ زبان دینی میں یہ جواب دیے جاتے ہیں. خلاصہ اس کا اگر میں چند جملوں میں عرض کروں, یوں بنتا ہے کہ خدا جب انسان سے گفتگو کرتا ہے تو اس کی زبان کیا ہے؟ اس کو زبان دین یا زبان دینی بھی کہتے ہیں. مثلا یہ تو میں نے خدا کے بارے میں کہا ہے, مثلا اسی طریقے سے آپ آ جائیں, جب نبی اور آئمہ شریعت کو تبیین کرتے ہیں, مقصود الہی کو تبیین کرتے ہیں اور مخاطب قرار دیتے ہیں اپنے عوام الناس کو, اپنی امت کو, اپنی ملت کو, تو کون سی زبان استعمال کرتے ہیں؟ نا چند سوال اچھے مطرح کیے, میں ان کا پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. مثلا یوں ہے, خدا با بندگانش پہ کدام زبان سخن می گویت, کون سی زبان سے بات کرتا ہے خدا اپنے بندگان سے؟ وہ برائے بیان مقصود خود اچھے شیوے بہرے می گیرت, یعنی اگر وہ اپنا مقصود بیان کرتا ہے, شیوہ کون سا اختیار کرتا ہے؟ وہ عرفی اختیار کرتا ہے, علمی اختیار کرتا ہے, تمثیلی اختیار کرتا ہے, سمبولک اختیار کرتا ہے. بس میں وارد ہوں گے, مزید مطالب کھل جائیں گے. ما چگونے می توانیم دربار خدا سخن بگوئیم, اب ہماری طرف سے ہے, हम अगर खुदा के बारे में सोहबत करना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं, कैसे करें? गुफ्तगू बा खुदा चिसान इंजाम में गिरत, यानी कैसे मुमकिन है, कैसे हम उससे बात करें? इसी तरीके से मसलन इस जबाने दीनी के अंदर फिर गर्बियों ने बात सवाल मतराह किए हैं, ये भी गर्बियों की तरफ से ही थे लेकिन हमारे मुस्लिम भी उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन यहां पे मसलन कहते हैं आया गुजारा है ये दीनी रा मी तवान बा रविश है ये तजुर्बी आजमूद, यानी ये जो हमारे पास कजाया दीनिया है, अल्लाह मौजूदन अल जन्नत वल नारो हक्कन, मतलब इस किस्म के जो गुजारा या कजाया हमारे पास मौजूद हैं, जो एतकादात या कजाया कजाया एतकादी मौजूद हैं, आया हम इसको तजुर्बे के जरिए आजमाइश कर सकते हैं या नहीं? अगर आप कहते हैं कि नहीं कर सकते तजुर्बा, मतलब जब आप कह रहे हैं कि अन्नारो मौजूदन यानी जहन्नम अल जन्नत मौजूदन, आया मैं इस कजिए को फिजिकली तजुर्बा कर सकता हूं ये नहीं कर सकता? आप कहते हैं नहीं कर सकते। फिर अगला सवाल वो ये मतरा करते हैं आया मी तवान आनहारा मानदार दानिस, आया फिर इसका मतलब है कि ये कजिया जब तजुर्बे में नहीं आ रहा इसका कोई माना भी है, या वो जैद को दैज कर दे तो दैज का जो माना नहीं होता तो ये अल्लाह मौजूदन का भी माना नहीं है, इसी दैज की माने दे, क्योंकि तजुर्बे हम पढ़ेंगे जाकर फसल के तूल में, वो अगर यही कहते हैं हर वो कजिया माना रखता है कि जो कजिया तजुर्बे के अंदर आ जाए, तजुर्बे के दायरे में आए, जो नहीं आएगा वो हमारे लिए ऐसे ही जैसे दैज है। फरहंगे जमाना छे तासीरी बर जमाने जबाने वाही बे जामी गुजारत, जब जबाने वही आ रही थी कुरान नाजिल हो रहा था, उस जमाने की जो फरहंग मौजूद थी उसने तासीर उसके ऊपर की है या नहीं की? आया कुरान मुतासिर हुआ है फरहंगे जमाना से या नहीं हुआ? वही के अंदर मजाज और किनाया की नक्श क्या है, कहां आया मजाज और किनाया कुरान में है या नहीं है? इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं कि जो हमने यहां पर इस फसल के अंदर इसके जवाब हासिल करने हैं। लिहाजा जबान दीनी के अंदर फिर मुख्तलिफ मबानी आए, बाजों ने कहा कि दीन की जबान जो है सम्बुलिक होती है, जैसे आप देखें सम्बुलिक का क्या माना बाद में पढ़ेंगे हम, यानी इशारई होना, सम्बुलिक होना यानी जिसकी कोई हकीकत नहीं होती लेकिन उसको इशारों में बयान किया जाता है, बाद में इसकी तफसील पढ़ेंगे हम। बाजों ने कहा कि तमसीली है, बाजों ने कहा उर्फी है, बाजों ने इस तरीके से मुख्तलिफ बयान किए हैं, और हत्ता बाजों ने तो ये कहा है कि कुरान जो है, एक तरफ से वो ये फर्जिया देते हैं कि कुरान मसलन अगर कोई नजरिया बयान करता है तो फरहंग को मद्देनजर रख के उनको जवाब दे रहा होता है लेकिन हकीकत में वो उसका कायल नहीं होता। मसलन ये कहते हैं कि कुल मन रब समावात सब रब अर्शिल अजीम, अब यहां पे क्या है समावात सब जिक्र किए हैं, ठीक है, अब यहां पे एक मुफक्किर आके कहता है कि ये जो समावात सब यहां पर जिक्र किया है ये सात आसमान हकीकत में मौजूद नहीं है लेकिन जो इस किस्म का एतकाद रखते थे उनको मुतवज्जे करने के लिए खुदा ने ये कजिया बनाया है, ये आयत जो है वो नाजिल किया है यहाँ पर, यानी हकीकत में सात आसमान नहीं है लेकिन चूंकि वो एतकाद रखते थे उन्हीं के एतकाद के मुताबिक आयत नाजिल करके उनको ईमान की तरफ बुलाया है, यानी ये कुछ ये एक मुफक्किर है, बाद में फसल बाज करेंगे अभी फकत मुकदमे के उनवान से। बाज बंदे ये आकर कह देते हैं, बाज बंदे आकर कहते हैं कि ये जो आप कहते हो कि जिस तरह के एक दफा मैंने पहले भी इशारा शायद किसी बाज के ज़मन में किया था, बाज बंदे आकर कहते हैं कि ये जो जन्नत और जहन्नम का तसव्वुर दीन के अंदर मौजूद है इसकी कोई हकीकत मौजूद नहीं है, खुदा ने फकत ये जन्नत और जहन्नम का जो तसव्वुर दीन के अंदर रखा हुआ है इस वजह से कि इंसान क्या करे उसके फरामीन पर अमल करे। जैसे मिसाल दी थी मसलन उसकी क्या है, आप बच्चे को एक काम करवाना चाहते हैं और वो लजबाजी अगर करे ना फरमानी करे तो आप क्या करते हैं उसको डराते हैं, कि मैं तुम्हें मसलन डंडा मारूंगा, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, तुम ये काम करो, लेकिन हकीकत में उसका इरादा ये नहीं होता और नहीं करता। तो लिहाजा यहां ये क्या है, ये जबान, ये कोई इश्काल अगर आपके सामने मतरह करता है तो उसका जवाब उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक जबान दीन का मसला हल ना हो। जबान दीन हकीकत में है क्या? आया जबान दीन ये इस बच्चे की माँ तरबियती जबान है, मसलन अगर काम करवाना है, इताअत व फरमान रवा यानी फरमान मुती बनाना है उसको, तो उसको थोड़ा सा डराओ धमकाओ, लेकिन हकीकत में आपका वो इरादा ना हो। पर ये तमाम मुश्किलात जो है वो जबान दीनी का मबना हल होने से ही हल होती हैं। पर हम आते हैं अपनी बात की तरफ, ये मुकदमा था, इसकी अहमियत है बात के अंदर। पहला नजरिया जो जबान दीनी के अंदर मौजूद है वो ये है कि जबान दीन तहते तासीर करार पाई है फरहंगे जमाना से। कैसे? मसलन वो कहते हैं कि कुरान ने इर्स का एक मसला पेश किया है। क्या मतलब? यूं आयत है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। खुदावंद मुताल यहां पर इर्स का मसला पेश कर रहा है, जिक्र हो रहा है कि जब वारिस मर जाते, यानी जो बाप जो है वो मर जाता है, तो वरासा में मिरास में तकसीम होना है, तो कितना कैसे तकसीम करें? तो कहा कि लिज़्ज़कर मिस्लो हज़्ज़ल उन्सयैन, दो बराबर बेटे को मिलेगा, उसका निस्फ किसको मिलेगा? बेटी को मिलेगा। कहते हैं कि ये जो हुक्म इलाही है ये फरहंगे जमाना उस वक्त के एतबार से नाजिल हुआ ये हुक्म। कैसे? उस जमाने के अंदर खातून की वक़्त नहीं थी, जमाने जाहिलियत के अंदर औरत का कोई किरदार नहीं था इज्तिमा के अंदर, औरत को अता इंसान भी नहीं समझा जाया जाता था, जैसे आप तारीख पढ़ते हैं जाहिलियत की कि वो क्या करते थे खवातीन के साथ। मीरास तो दूर की बात है कि इंसान उसको कोई पैसे या इस किस्म की कोई चीज मिले जाकर। अब चूंकि कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ है कि जिस जमाने के अंदर औरत इज्तिमा के अंदर किसी किस्म का कोई नक्श नहीं रखती थी, तमाम का तमाम इज्तिमाई व सियासी व तमाम काम जो अपने क्या इज्तिमाई जंबे के साथ मरबूत थे वो मर्द के जिम्मे हुआ करते थे। इस्लाम ने खातून को अहमियत देने की खातिर क्या किया? हुक्म नाजिल कर दिया कि खातून को भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, अगरचे कम है, मर्द को ज्यादा मिल रहा है, खातून को कम मिल रहा है, लेकिन ना होने से तो बेहतर है। ये हुक्म भी कम से कम उसकी क्या अहमियत को तो बयान कर रहा है कि दीन इतनी अहमियत देता है कि कुछ ना कुछ हिस्सा उसके जिम्मे भी जाता है, हालांकि जमाने जाहिलियत में इतना भी उनको नहीं दिया जाता था। मर्द चूंकि इज्तिमाई कामों में मेहवर था और तमाम काम वही काम अंजाम देता था, लिहाजा कुरान ने खुदावंदे मुताल ने उसको सामने बिस्तर दिया है, ज्यादा साम दे दिया, ज्यादा हिस्सा दे दिया उसको। यह हुक्म उस जमाने के साथ मरबूत था। अब जैसे जैसे जमाना गुजरता गया और खातून ने इज्तिमा के अंदर भी कदम रख दिया, और आज ऐसा जमाना आ गया है कि खातून इज्तिमाई व सियासी व और जितने भी यानी इज्तिमा के मसाइल के अंदर मौजूद है इक्तसादी, उसके अंदर शाना बशाना मर्द के साथ खड़ी होकर काम कर रही है, उतना शऊर रखती है, उतना फिक्र रखती है, उतना मसलन जद्दोजहद करती है और तमाम अरसाए हयात के अंदर वो अपना एक नक्श रखती है। जब इस हद तक इसकी रुश्द हो गई है और इसने मकाम पैदा कर लिया है जमाने के अंदर, तो अब इस हुक्म का कोई माना नहीं है। अब क्या होना चाहिए? एर्स मुसावी तकसीम होना चाहिए, जितना मर्द को मिलेगा उतना खातून को मिलेगा। कुरान में जो ये हुक्म आया है, ये हुक्म क्या है? उस फरंगे जमाना के मुताबिक था। ये मसलन कहते हैं फरहंगे जमाना के एतबार से जो है वो जमाने दीनी जो है मुर्तबित है उसके साथ, और मालूम होता है कि फरहंगे जमाना से वही ने तासीर ली है। आप देखते हैं कि जब भी तर्ज, जब भी खुदा ने तफक्कुर का हुक्म दिया है इंसान को, तो उन अशिया का नाम उठाया जो उस जमाने के अंदर मारूफ हुआ करती थी। मसलन उस जमाने में ऊंट ज्यादा थे, तो खुदा ने जब तफक्कुर का अंगीजा उनके अंदर ईजाद करना चाहा, तो कहा अफला यंजुरूना इलल एबले कैफ खुलकत। ऊंट में कोई खास खसूसियत मौजूद है नहीं, तमाम मखलूकात ही ऐसी हैं कि उसके अंदर इंसान दिक्कत करे तो खुदा तक पहुंच जाता है। लेकिन ऊंट का क्यों जिक्र हुआ है यहां पर? इस वजह से चूंकि ऊंट वहां की मारूफ जानवर था, क्योंकि अरब सहराई जिंदगी थी उनकी, ऊंट से उनका सरोकार था, हर वक्त उनके सामने था, और खुदावंदे मुताल ने उनको खिलकत के अंदर तफक्कुर करने की दावत दी ताकि वो क्या करें, खुदा तक पहुंचे। इस आयत के जरिए कहा अफला यंजुरूना इलल एबले कैफ खुलकत। इसी तरीके से बहुत ज्यादा शवाहिद इकट्ठे करते हैं ये कायलीन, जो नजरिए के कायलीन हैं, और फिर ये नतीजा लेते हैं कि वाही मुतासिर है फरंगे जमाने से। मगरब भी शामिल है, लेकिन हमारे बाज़ मुनहरिफ भी शामिल है, मतलब उसमें डॉक्टर सुरूश शिया है, इसमें हम नज़र है इनके, क्योंकि गर्मियों से मुतासिर है, इसके मबानी गर्मी है। बहरहाल जब कभी मौका मिला, कभी तोफी कोई बड़ी किताबों के अंदर, तो वहाँ पर इसके मबानी जिक्र होंगे कि सुरूश के तमाम गर्बी मबानी है। शिया हौजे का ही पढ़ा हुआ, लेकिन फिर गर्ब में गया जाकर, वहाँ अपनी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने गया, और वहाँ पर जाकर मुतासिर हुआ अपने उन असातीद से कि जो गर्बी थे, और लिहाजा फिर इसने आकर मुख्तलिफ नज़रियात दिए जो उन्हीं मबानी पर मुबतनी है। उनमें से एक नज़रिया ये भी है। अब जवाब क्या है इसका, यानी नज़रिया वाज़ेह हो गया ये वाला, कि पहला नज़रिया यह है कि ज़बाने वही जो है उस वो मुतासिर है फरहंगे ज़माना से। चूंकि हमारी यहां से यहां मुराद या फरहंगे ज़माना से ज़माने जाहिलियत मुराद है, क्योंकि कुरान असरे नज़ूल क्या है? ज़माने जाहिलियत का दौर था। और ये कह रहे हैं कि ज़माने दीन क्या है? मुतासिर है किससे? फरहंगे जमाना से। तो हमें जमाने जाहिलियत के अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या अनासिर मौजूद थे कि वो अनासिर कुरान के अंदर भी मुनअक्किस हुए हैं। तो हम कहें कि तासीर हुआ है। तासीर कब होती है? कि जब हम उस जमाने के जो अनासिर मौजूद हैं उनको कबूल कर लें, कबूल कर लें तो फिर कहते हैं कि ये बंदा उससे मुतासिर हो गया। जैसे मैं अभी ये कह रहा था सुरूश के बारे में कि गर्व में गया, अपने असातीद से मुतासिर हुआ, यानी उसके मबानी को कबूल कर लिया और कबूल करने के बाद अपना अकीदा बना लिया जाकर, इसको कहते हैं मुतासिर होना। हम देखते हैं आकर कि असर जाहिलियत के अंदर क्या अनासिर मौजूद थे कि कुरान ने अगर उनको कबूल किया तो मुतासिर का नजरिया दुरुस्त है, अगर वो कबूल न किए हुए तो फिर बात वाजे हो जाएगी कि मुतासिर नहीं। असर जाहिलियत जो फरहंग है इनकी, इसकी दो किस्म के हम खसूसियात इसको तकसीम कर सकते हैं, खसूसियात आमा व खसूसियात खासा। खसूसियात आमा से क्या मुराद है, यानी ऐसे अनासिर इस फरहंग के अंदर मौजूद थे कि जो फकत इन अरबों के साथ खास नहीं थे, ये अनासिर अगर किसी और फरहंग में भी चले जाएं तो पाए जाते हैं। मसलन ज़बाने कौम, उस जमाने की उस फरहंग की जबान अरबी थी। कुरान भी क्या हुआ है, अरबी नाजिल हुआ, जैसे कुरान खुद कहता है इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम तअक़िलून, कुरान को हमने अरबी नाजिल। दूसरा जो अंसुर आम है वो क्या है, खत कौम, खत यानी लिखना, लिखाई का जो खत होता है वो फरहंग आम में आता है। आप जब कभी किसी कौम को मुखातिब करना चाहते हैं तो उसकी जबान को इख्तियार करेंगे। अब ऐसे तो नहीं हो सकता आप गुफ्तगु कर रहे हो उर्दू जबान वालों के लिए लेकिन बोल क्या रहे हो, फारसी, अब हतमन उर्दू जुबान में बोलेंगे, अगर लिखेंगे तो उन्हीं का खत इस्तेमाल करेंगे। तीसरी चीज तमसीलात, जरबुल मसल, जो उस जमाने के अंदर जरबुल मसल मौजूद होंगी, मिसाल हा जो वो तशबी देने के लिए, एक मतलब को समझाने के लिए जिन तशबीहात से इस्तेफादा करते हैं, उन तशबीहात से इस्तेफादा करना कि भी कुरान ने अंजाम दिया है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना कि जिससे उस मंतके की तारीखी और जुग्राफियाई वज़ मालूम हो कैसी थी। मसलन कुरान ने अहकाफ का लफ्ज इस्तेमाल किया है, मदियन का इस्तेमाल किया, कौम आद का, कौम समूद का, यानी पता चलता है कि उस जमाने में जिसका ये वाकया नकल कर रहा है कौम समूद मौजूद थी, कौम आद मौजूद थी, उसमें ये चीजें मौजूद थी, तो ये क्या है, हाकी है उसकी वज और उसकी तारीखी जुग्राफिया वगैरह के एतबार से। अगर उस जबान के अंदर के जिसके मुखातिब को आप अपना मुखातब करार दे रहे हैं उनकी जबान के अंदर कुछ अल्फाज मुअर्रब हों, यानी क्या मतलब दूसरी जबानों से मुंतकिल हुए हों, तो आप अगर उन अल्फाजों को इस्तेमाल करें तो मुश्किल नहीं है। मसलन और अरबी जबान के अंदर बाज लफ्ज आए हैं और कुरान में भी आए हैं, फिरदौस का लफ्ज है, फिरदौस असल में फारसी है, जंजबील का लफ्ज है जो कि असल में हिंदी है, इब्राहिम का लफ्ज आया है कि जो कि इबरी है, अरबी नहीं है, लहजा ये इस्तेफादा हुआ है। ताकीदात से इस्तेफादा करना, वो कैसे कलाम को अपना मौकत बनाते हैं, मतलब हम उर्दू वाले क्या है कसम खा के या इस किस्म की चीजों से अपने कलाम को मौकत बनाते हैं, यानी किसी को यकीन दहानी करानी हो, किसी को मतलब की अहमियत बतानी हो, किसी को मतलब ये ताकीद लेकर आते हैं, ताकीद क्या होती है, फिर उस जमाने में जो राइज होगी ताकीदात उनसे इस्तेफादा करेंगे आप ताकि आप अपने कलाम को मौकत बना सकें। इसको ये तमाम अनासिर हैं कि जो अनासिर आमा शुमार होते हैं। अगर कोई जबान इन अनासिर से इस्तिफादा करे तो कोई आलिम दीन, कोई मुफक्किर, कोई महक्किक ये नहीं कहता कि ये जबान मुतासिर है इस फरहंग से। क्यों? इस वजह से कि आप ये जबान क्या कर रही है, मुखातब करार दे रही है इस फरहंग वाले को, तो इस फरहंग के मुश्तरकात को तो मद्देनजर रखेगी तो अपना मतलब समझा सकेगी। अगर आप कहें कि ना, अगर आप उनके मुश्तरकात से इस्तफादा भी करेंगे तब भी आप मुतासिर शुमार होंगे, तो फिर कह रहे मुतासिर कौन है पूरी दुनिया के अंदर? कोई ऐसा कलाम लेकर आए, कोई ऐसी किताब लेकर आए, कोई ऐसा मतलब लेकर आए जो फिर गैर मुतासिर हो? नहीं हो सकता, कोई इल्मी नतीजा भी सामने नहीं आएगा। ये अनासिर आमा थे और कुरान ने इस्तेफादा भी किया इससे, शवाहिद भी मौजूद हैं उसके कसीर तादाद के अंदर, लेकिन चूंकि ये अनासिर आमा हैं लिहाजा, और इससे इस्तेफादा करना इल्जामी भी है अपना मकसूद समझाने के लिए, यानी अगर आप किसी जमाने के किसी फरहंग के अंदर जाकर तबलीग करना चाहते हैं, अपना मकसूद समझाना चाहते हैं, तो आप उसकी जबान भी इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे तो उनका खत भी इस्तेमाल करेंगे, मिसालें अगर लेकर आएंगे तो उन्हीं के मुताबिक मिसालें लेकर आएंगे जो उस जमाने के, मतलब मुहावरे जिसको कह लें, आप एक मतलब को समझाने के लिए मुहावरा लेकर आते हैं, मुहावरा आप ईरान का थोड़ा उठा कर लेके जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, जो मुहावरे पाकिस्तान में मारूफ होंगे उन मुहावरों से इस्तेफादा करके आप अपने मतलब को समझा सकेंगे, तशबीहात और मिसालें जो है मौजूद है। लिहाजा अगर इस अनासिर आमा से इस्तेफादा कर ले कोई जबान तो वो मुतासिर व मुनफ़िल शुमार नहीं होती। हाँ, अगर अनासिर खासा जो है वो मौजूद हो, खसूसियात खासा वो अगर मौजूद हो जाएं, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ अब ये जबान मुतासिर हुई है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी खसूसियात असर जाहिलियत में मौजूद थी। पहली खसूसियत जो मौजूद थी कुफ्र था, मबदा और माद का इनकार था, ना खुदा के कायल थे ना कयामत के कायल थे असर जाहिलियत के अंदर। अब सवाल, आया कुरान ने इसको कबूल किया है, कुफ्र को रद्द किया है? और सरसख्ती से रद्द किया है, ये नहीं हो सकता। असले दूसरी जो खसूसियत मौजूद थी बारिज असर जाहिलियत के अंदर, शिर्क था। और शिर्क को भी खुदा ने रद्द किया आकर। एक और खसूसियत जो पाई जाती थी वो ये कि खुदा के लिए क्या है, बेटा होने के कायल थे, क्योंकि जो जाहिल जमाने जाहिलियत के अरब थे उनमें से एक ग्रोह मसीह व यहूदी भी था, और मसीह यहूदी का अकीदा क्या है, हजरत मसीह क्या है, इब्नुल्लाह है, और यहूदी क्या थे, उजैर को इब्नुल्लाह कहते थे। और खुदा बंदे मुताल ने कुरान के अंदर क्या किया है, नफी की है इसकी। फरिश्तों को खुदा की बेटियां मानते थे, खुदा ने रद्द किया है इसको, आयत मौजूद है, इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा ला यमस्सूनल मलाइकता तस्मियतल उनसा। इबादात और मनासिक के अंदर जो जो इन्हराफात मौजूद थे खुदा ने आके रद्द किया उनके उन। खुराफात को आकर जो अखलाकी कमजोरियां उनके मौजूद अंदर मौजूद थी, जो अखलाकी पस्तियां उनके अंदर मौजूद थी, उन तमाम को आकर क्या किया है, रद्द किया है, कबूल नहीं किया आकर। असरे जाहिलियत के अंदर क्या है, दुख्तर कुशी थी, बेटियों को कत्ल किया जाता, जिंदा दरगोर किया जाता था, खुदा ने उसकी नफी की है, बे आई जम्बिन कतलत। रिबाखारी आम थी, खुदा ने रद्द किया है उसको आके। और इस तरीके से आप खसूसियात शुमार करते रहे बेशुमार, आप देखेंगे कि जितनी भी नफी منفی خصوصیات موجود تھیں اور اکثر منفی خصوصیات تھیں، اس کو قبول نہیں کیا. لیکن جو قبول کیا ہے مثبت خصوصیات کو، اس کو دلیل کی وجہ سے قبول کیا ہے، یعنی کیونکہ ان کی جو وہ خصوصیات مثبت تھیں، چونکہ وہ فطرت انسان کی وجہ سے مثبت تھیں، کیونکہ وہ انسان اگر انجام دے رہے تھے تو فطرت انسان اس کو اس کی طرف لے کر جا رہی تھی، اور خدا کا دین کیا ہے؟ دین فطرت ہے. اگر کوئی خصوصیت مثبت موجود تھی تو نہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی تھی اور وہ اس پر عمل کر رہے تھے اور قرآن نے آ کے اس کی تصدیق کر کے قبول کر لیا، پس یہ قرآن منفعل شمار ہوتا ہے، تاثیر پذیر شمار ہوتا ہے، بلکہ چونکہ ان کی وہ خصوصیت مثبت فطرت کی طرف بازگشت تھی، اس کی عقل کی طرف بازگشت تھی اس کی، لہذا قرآن جو ہے اس نے قبول کر لیا. کیوں؟ قرآن خود دین فطرت ہے، قرآن خود دین عقلانیت ہے. عقل و فطرت کی وجہ سے جو چیز کوئی کسی پر عمل کرے تو حتماً قرآن اس کی کیا کرے گا؟ تصدیق کرے گا. بس یہ نتیجہ لینا کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں قرآن کے اندر، کے جو زمانہ جاہلیت کے اندر موجود تھی، بس ان چیزوں کا قرآن کے اندر موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کیا ہے؟ متاثر ہے کس سے؟ فرہنگ زمانہ سے. تو یہ بات درست نہیں. بہت ساری ایسی مثالیں. اس میں ایک نمبر میں عنصر عامہ کی طرف اشارہ ہے نقد و بررسی کے اندر، ایک نمبر شمارہ بمقتضی حکمت الہی و برائے تامین ہدف جو یہ شروع ہو رہا ہے، میں نے اس کو خادم توضیح دے دیا ہے، باقی مطالعہ کریں تو واضح ہو جائے گا. دوسرا مطلب جو عناصر خاصہ کی طرف اشارہ ہے اس کو بھی تبیین کر دیا. مثلا یہاں پہ ایک مطلب اس نے یہ ذکر کیا ہے کہ پیمبران الہی بی پرواہ با پندارہ یہ نادرست مردم مبارزے میں کردن، بھائی جو عرض کیا ہے کہ عصر جاہلیت کے اندر لوگوں کے اندر جو خرافات موجود تھیں انبیاء نے مخالفت کی، یہ مبارزہ کیا ہے ان کے ساتھ. وحیج کردار نہ شائستی را بر نہ میتھا بند، یعنی قبول نہیں کیا اس کو. ہاں یہ والی بات جو میں نے ابھی عرض کی ہے اس کو میں پھر پڑھ کے ترجمہ کر دیتا ہوں. موافقت اسلام با برخی از آداب و سنن جاہلیت، اگر کسی جگہ پر اسلام نے بعض آداب عصر جاہلیت کو قبول کیا ہے، نہ برائے ہمراہی با قوم، نہ اس وجہ سے کہ یہ ان کو اس قوم کا یہ خصوصیت موجود تھی اس وجہ سے، بلکہ بے دلیل آن بود از کہ ان سنن یا از عقل و فطرت سر چشمے گرفت آند، یا یہ جو آداب ان میں ایجاد ہوئے ہیں، سنن ان کے اندر ایجاد ہوئی ہیں، ان کا منبع و سرچشمہ کیا ہے؟ عقل و فطرت ہے. لہذا چونکہ خود دین الہی جو ہے فطر دین فطرت ہے، دین الہی جو ہے دین عقلانیت ہے، لہذا ان کو خدا نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. ٹھیک ہے، ان کی یہ جو باتیں ٹھیک ہیں، ان کی جو اعمال ہیں یہ ٹھیک ہیں. یا سرچشمہ اس کا دین و کیا نام ہے فطرت و عقل تھا، یا کیا ہے ادیان توحیدی پیشین ہے. مسجد وہ بھی پیروکار تھے، حضرت مسیح کے پیروکار تھے، یہودی تھے پیروکار تھے، حضرت ابراہیم کے دین کے پیروکار تھے، اس قسم کے مثلا جو کسی نہ کسی دین کے پیروکار تھے اور منعرف ہو گئے تھے اور خرافات ایجاد ہو گئی تھی، اب حتماً ان کے جو یہ آداب تھے اسی دین الہی کی وجہ سے یہ آداب مثبت موجود تھے ان کے اندر، چونکہ وہ دین الہی بھی خدا ہی کا تھا. تو اگر وہ آداب مثبت کو قبول کر رہا ہے تو وہ اس وجہ سے، چونکہ خود اس نے اس کا دستور دیا ہوا، خود حکم دیا ہوا ہے اس کا، نہ یہ کہ چونکہ یہ قوم عمل کر لیا لہذا میں تصدیق کی مہر لگا دوں، چلو کچھ نہ کچھ ان کی بھی بات مان لیتا ہوں میں. اور اگر یہ سروش جیسے روشن فکر لوگ آ کر یہ کہتے ہیں چونکہ اس زمانے کے اندر خاتون کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کو اہمیت دینے کے لیے کیا ہے تھوڑا بہت ہی ان کو دے دیا، اور اس زمانے کے اندر اتنی کیا ہے پیغمبر کے پاس اتنی क्या है, जुरअत वो नहीं थी कि आकर एकदम से जो है खातून को मर्द का मकाम दे दे, मुमकिन नहीं था मसलन। इसको जवाब यही है कि पैगंबर हमारा वो है कि जो शुजातरीन है, जिसने बड़ी बड़ी खुराफात के अंदर क्या है उस मुकाबले किए हैं और उन खुराफात को जड़ से उखाड़ के फेंका है। तो क्या आया ये जन को अगर मुसावी इर्स देना होता और दीन का मकसूद भी यही होता और पैगंबर फिर ये काम ना करते? इससे बड़े काम किए हैं, ये काम नहीं कर सकते थे, ये दस्तूर नहीं दे सकते थे वादे तौर पर खुदा की तरफ से? या तो आप आकर साबित करें कि हाँ जो वहां पर तबलीग का तरीका इख्तियार किया था पैगंबर ने वो क्या था, जहां भी कोई असर व रसूख उनका ज्यादा होता था पैगंबर वहां पर क्या थे, थोड़े थोड़े आगे चलते थे। लेकिन हम देखते हैं कि तौहीद से बड़ी खुराफात नहीं हो सकती। उसके मुकाबले में आकर मैं तौहीद के यानी शिर्क जो है आफत है यानी उनके शुमार होती थी, उसके खिलाफ जो है वो मुबारजा किया और सख्तियां बर्दाश्त किया। तो ये फिकही हुक्म एक छोटा सा कैसे वो डर के मसलन चुप हो जाते हैं, इस किस्म के कार के जमाना इजाजत नहीं दे रहा था उस वजह से मसलन नहीं कि हम इंसान तो कह सकते हैं मतलब तबलीग करने के लिए कहें जमाना इजाजत नहीं दे रहा लिहाजा खामोश हो जाए, पैगंबर के बारे में तो ये नहीं सोच सकते, मुबल्लिग़ दीन है वो, मुशर्रे हैं खुदा की तरफ से, मतलब लहजा ये काम नहीं कर सकते। बस साबित हुआ कि ये जो नजरिया दिया था जबान दीन का कि ये जमाने दीन जो है मुतासिर व मुनफाइल अस फरहंगे जमाना है, ये नजरिया बातिल। इसके बाद अगला नजरिया जो है वो ये कि जबान दीन जबान सम्बुलिक है, नमादीन है। तोजी नहीं देता इसकी, बाद में देते हैं, कोई टाइम गुजर गया। यानी दीन इशारे व किनाए में बात करता है, बात करता है, सरी नहीं। इससे क्या मुराद है और इससे हम कितनी हद तक कबूल कर सकते हैं, कितनी हद तक रद्द कर सकते हैं, इसको इंशाल्लाह फिर बाद में इसके ऊपर मुफसल बात करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।